एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं, एक ऐसा दिन जिसने दो दुनियाओं की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
हमेशा के लिए।
हम बात कर रहे हैं मैक्सिकन लेखक अल्वारो एनरिगे के उपन्यास यू ड्रीम्ड ऑफ एम्पायर्स की।
जी,
ये उपन्यास नवंबर 1519 के सिर्फ एक दिन की कहानी है।
और वो भी क्या दिन था,
जब स्पैनिश विजेता हर्नान कॉर्टेस
और मेक्सिका सम्राट मोक्तेजुमा
पहली बार आमने सामने आए। पर ये उपन्यास मतलब किसी जंग का महाकाव्य नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक कह सकते हैं 24 घंटे का मनोवैज्ञानिक ड्रामा है, एक राजनैतिक शतरंज की बिसात जहां हर चाल कयामत ला सकती थी,
और इसी की पड़ताल आज हम गहराई से करेंगे।
बिल्कुल, इस उपन्यास की खूबसूरती ही इसकी सादगी में है। सोचिए, ये पूरी की पूरी विजय गाथा को एक दिन की घुटन में समेट देता है।
मतलब लगभग 400 स्पैनिश सैनिक टेनोच्टिट्लान शहर के बीचों बीच हैं।
हाँ, और वो शहर उस वक्त दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक था।
और ये सैनिक ये मेहमान हैं या शायद कैदी, ये उन्हें खुद भी ठीक से नहीं पता।
हवों में एक अजीब सी बेचैनी होगी,
बेचैनी, शक, और दो ऐसी संस्कृतियों का टकराव जो एक दूसरे के लिए किसी दूसरी दुनिया के प्राणी जैसे हैं।
और इसी टकराव के केंद्र में हैं दो किरदार जिन्हें इतिहास ने लगभग मिथक बना दिया है, पर लेखक अल्वारो एनरिगे उनके बुतों को तोड़कर उन्हें इंसानों के रूप में हमारे सामने रखते हैं।
सही बात है। चलिए पहले हर्नान कॉर्टेस की ही बात करते हैं।
उपन्यास में वो कोई बहादुर योद्धा तो नहीं लगता।
बिल्कुल नहीं, वो तो एक हताश जुआरी जैसा है। वो क्यूबा से कानून तोड़कर भागा है, कर्ज में डूबा हुआ है और
तेज बुखार में तप रहा है।
ये बुखार सिर्फ शारीरिक नहीं है, है ना?
नहीं, ये उसकी मानसिक हालत का भी प्रतीक है। उसे पता है कि एक गलत कदम और उसकी पूरी सेना का और उसका खुद का अंत हो जाएगा।
तो वो बस दिखावा कर रहा है।
हाँ, वो लगातार ताकत का एक मुखौटा पहने हुए है जिसके पीछे सिर्फ डर और गहरी असुरक्षा है। उसकी महत्वाकांक्षा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है।
और दूसरी तरफ है सम्राट मोक्तेजुमा। हमारी इतिहास की किताबों ने तो उन्हें हमेशा एक कमजोर अंधविश्वासी राजा दिखाया,
और ये उपन्यास इसी छवि को पूरी तरह से पलट देता है। और मेरे ख्याल से ये इस उपन्यास का सबसे शानदार पहलू है।
कैसे?
यहाँ मोक्तेजुमा एक थके हुए दार्शनिक राजा हैं। वो बुद्धिमान है पर उनमें एक गहरी उदासी है। लेखक एक जगह कहते हैं कि उन्हें एक ब्रह्मांडीय थकावट महसूस हो रही है।
ब्रह्मांडीय थकावट, ये बहुत दिलचस्प है।
उन्हें इन अजनबियों से डर नहीं लगता, वो उन्हें एक कैटेगरी एरर की तरह देखते हैं।
कैटेगरी एरर मतलब
एक ऐसी पहेली जो उनकी दुनिया के किसी खांचे में, किसी नियम में फिटी नहीं होती। उन्हें लगता है कि वो एक युग के अंत को देख रहे हैं और उनके हाथ में सिर्फ नियति को स्वीकार करना है।
तो एक तरफ हताश कॉर्टेस, दूसरी तरफ ये नियतिवादी मोक्तेजुमा, और इन दोनों के बीच पुल का काम कर रही है एक महिला,
मलिनसिन, जिसे इतिहास मालिंचे के नाम से जानता है।
और वो सिर्फ एक अनुवादक से कहीं ज्यादा है।
वो इस कहानी की असली सूत्रधार है, एक भाषाई और राजनीतिक जीनियस। वो सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं कर रही, वो दो पूरी की पूरी दुनियाओं के बीच की खाई को पाटने की कोशिश कर रही है।
कैसे? वो क्या करती है?
वो कॉर्टेस के लालच भरी बातों को सम्मानजनक भाषा में बदलती है और मोक्तेजुमा के गहरे दार्शनिक जवाबों को कॉर्टेस के समझने लायक बनाती है। लेखक उसे उस नाजुक शांति की इकलौती वास्तुकार कहते हैं।
पर वो जानती है कि ये शांति बहुत नाजुक है।
हाँ, वो जानती है कि इस इमारत की नींव में दरारें हैं और वो किसी भी पल ढह सकती है। वो शायद दोनों पक्षों को उनसे बेहतर समझती है जितना वे खुद को समझते हैं।
तो इन तीन किरदारों के साथ उस एक दिन में तनाव कैसे बढ़ता है? पहली मुलाकात कैसी थी? जाहिर है वो बहुत अजीब रही होगी।
बहुत ही अजीब। उपन्यास उस शुरुआती पल को बड़ी खूबसूरती से पकड़ता है। स्पेन के लोग शहर की भव्यता, उसके नहरों, पिरामिडों को देखकर दंग हैं,
लेकिन डरे हुए भी हैं।
हाँ, मानव बलि के संकेतों से डरे हुए हैं। और दूसरी तरफ मैक्सिका लोग इन अजनबियों को देखकर हैरान हैं। उनके अजीब बाल, दाढ़ियाँ, धातु के कपड़े और सबसे बढ़कर उनकी गंध।
और घोड़े भी तो थे।
बिल्कुल, घोड़ों को देखकर तो वो चकित हैं। उन्हें वो किसी दैवीय जीव की तरह देखते हैं।
और इसी बीच वो मशहूर घटना होती है जब कॉर्टेस यूरोपीय अंदाज में मोक्तेजुमा को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है।
हाँ, और मोक्तेजुमा उसे बहुत धीरे से लेकिन मजबूती से रोक देते हैं। ये एक छोटा सा इशारा है, लेकिन ये उस सांस्कृतिक खाई को साफ साफ दिखा देता है जिसे पाटना लगभग नामुमकिन है।
एक के लिए जो दोस्ती का प्रतीक है,
दूसरे के लिए वो सम्राट के दैवीय शरीर का अपमान है। मालिट्रिन्स के लिए ये पहला संकेत था कि ये काम उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है।
यहीं से गलत फहमियों का सिलसिला शुरू हो जाता है
जी,
और ये तनाव उस भव्य भोज में अपने चरम पर पहुंचता है जो उपन्यास का कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु है।
उस सीन में ऐसा क्या खास है?
वो भोज एक उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक नाटक है। सोचिए, एक तरफ स्पेन वासी हैं जो ऐसे व्यंजन खाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने कभी देखे तक नहीं, जैसे कीड़े, अजीब तरह के सॉस।
और कुर्तेस तो नशे में भी है।
हाँ, नशे में धुत है और बार बार सोने के बारे में पूछकर अपनी असलियत जाहिर कर देता है। वो कूटनीति का दिखावा कर रहा है पर उसकी नजर सिर्फ दौलत पर है।
और मैक्सिका पक्ष का क्या हाल है? वो भी तो ये सब समझ रहे होंगे।
बिल्कुल, मोक्तेजुमा के सलाहकार, खासकर उसका भाई क्विटलाहुआक, अपनी नफरत मुश्किल से छिपा पा रहे हैं। उनकी आंखों में इन घुसपैठियों के लिए सिर्फ घृणा है।
और यहीं पर लेखक की शैली कुछ अलग करती है ना?
हाँ, यहीं पर एनरिगे की लेखन शैली कमाल करती है। वो पात्रों के मन में चल रहे विचारों को दिखाने के लिए आधुनिक भाषा और यहाँ तक कि अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा,
जैसे
जैसे एक मेक्सिका सलाहकार मनीमन इन स्पेनियों की तुलना किसी गंदे जानवर से करता है। ये जो कालभ्रम या एनाक्रोनिज्म का इस्तेमाल है, ये हमें उन किरदारों के दिमाग के अंदर ले जाता है।
और ये दिखाता है कि सत्ता की राजनीति,
उसकी नफरत और शक तब भी वैसे ही थे जैसे आज हैं। ये मानवीय भावनाएं समय से परे हैं।
ये बहुत दिलचस्प तकनीक है। ये उन ऐतिहासिक किरदारों को हमारे बहुत करीब ले आती है जैसे हम उनका मन पढ़ पा रहे हो। तो इस तनाव भरे भोज के बाद आखिर वो कौन सा पल आता है जब ये नाजुक शांति का धागा टूट जाता है?
वो क्षण तब आता है जब बात धर्म पर आ जाती है। कॉर्तेस अपने बुखार, नशे और हताशा में एक ऐसी गलती कर बैठता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था।
क्या करता है वो
मोक्तेजुमा से मांग करता है कि शहर के महान पिरामिड के ऊपर से मैक्सिका देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया जाए और उनकी जगह एक क्रॉस और वर्जिन मैरी की तस्वीर लगा दी जाए।
ओहो, ये तो सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं थी, ये तो सीधे सीधे उनकी आत्मा पर, उनके अस्तित्व के केंद्र पर हमला था।
बिल्कुल, ये आखिरी अपराध था। एक ऐसी सीमा लांग दी गई थी जिसे पार करने का मतलब था युद्ध का ऐलान। मोक्तेजुमा के लिए, उनके पुजारियों के लिए, पूरे समाज के लिए ये एक अक्षम्य अपमान था।
तो यही वो पल था?
हाँ, ये वो पल था जब मालिनसिन भी समझ गई कि अब वो इस तबाही को नहीं रोक सकती। उस एक मांग ने उस नाजुक राजनयिक दिखावे के महल को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया।
और इसके बाद उपन्यास का अंत कैसे होता है? जाहिर है वो हमें पूरी लड़ाई या शहर की घेराबंदी नहीं दिखाता होगा।
नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उपन्यास उसी दिन के अंत में खत्म होता है। शांति भंग हो चुकी है, हवा में हिंसा की गंध है,
दोनों पक्ष अपनी अपनी जगहों पर लौट चुके हैं।
जी, लेकिन अब वो मेहमान और मेजबान नहीं बल्कि दुश्मन है। हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है। इतिहास हमें बताता है कि एक महान सभ्यता का पतन होने वाला है,
पर लेखक हमें उस तबाही से ठीक पहले के आखिरी पल में छोड़ देते हैं।
हाँ, वो हमें उस चाकू की धार पर खड़ा कर देते हैं जिस पर एक पूरी दुनिया का भविष्य टिका था और हम जानते हैं कि वो किस तरफ गिरने वाला है।
ये अंत पाठक को एक गहरी बेचैनी के साथ छोड़ देता है। तो अगर हम कहानी से परे देखें तो ये उपन्यास हमें किन बड़े विषयों पर सोचने के लिए मजबूर करता है? एक तो साफ है, दो दुनियाओं की टक्कर।
हाँ, लेकिन ये सिर्फ सभ्यताओं का टकराव नहीं है, ये विश्व दृष्टि का टकराव है, दो अलग अलग सच्चाइयों का टकराव।
इसे थोड़ा और समझाइए।
एक तरफ स्पेन वासी हैं जो मानते हैं कि इतिहास एक सीधी रेखा में चलता है जिसका अंत क्यामत के दिन होगा। उनकी दुनिया में एक ईश्वर है, एक सच है। दूसरी तरफ मैक्सिका हैं जिनकी दुनिया चक्रीय है, समय एक चक्र की तरह घूमता है।
तो वो एक ही धरातल पर बात ही नहीं कर रहे थे?
बिल्कुल, जैसा कि लेखक एक जगह कहते हैं, वे एक ही कहानी में भी नहीं थे।
और ये उपन्यास इतिहास लिखने के तरीके पर भी एक तरह की टिप्पणी है। ये उस विचार को चुनौती देता है कि इतिहास का कोई एक सच होता है।
बहुत मजबूत चुनौती। ये दिखाता है कि इतिहास जैसी बड़ी घटनाएं सिर्फ भव्य रणनीतियों से नहीं बल्कि बुखार, बदहजमी, घमंड और गलत अनुवाद जैसी छोटी छोटी चीजों से भी तय होती हैं।
और इतिहास लिखने वाला उसे अपने नजरिए से लिखता है।
हाँ, कॉर्टेस ने जो कुछ भी लिखा वो खुद को सही ठहराने वाला एक तरह का प्रचार साहित्य लगता है। एनरिके हमें दिखाते हैं कि इतिहास का पहला ड्राफ्ट कितना गंदा, अराजक और इंसानी कमजोरियों से भरा होता है।
इसमें कोई नायक या खलनायक नहीं है।
नहीं, सिर्फ डरे हुए, लालची और भ्रमित इंसान हैं जो इतिहास की लहरों में बह रहे हैं।
और इस सब में भाषा और अनुवाद की भूमिका तो केंद्रीय है ही।
बिल्कुल, मालिन अर्जिन का किरदार इसी की मिसाल है। ये उपन्यास दिखाता है कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि दुनिया बनाने और बिगाड़ने का औजार है।
वो लगातार एक दुनिया को दूसरी दुनिया के लिए रच रही थी।
सही कहा, वो एक दुनिया के अहंकार को दूसरी दुनिया के सम्मान में बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिर में दोनों दुनियाओं के बीच की खाई इतनी बड़ी है कि कोई भी भाषा उसे पाट नहीं सकती।
तो ये संचार की विफलता की कहानी है।
हाँ, एक दुखद कहानी, एक त्रासदी जो शायद टाली जा सकती थी अगर वे एक दूसरे को सच में सुन पाते।
तो अंत में ये उपन्यास हमें एक उदासी और एक मार्मिक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या हो सकता था, क्या कहानी का कोई और अंत संभव था।
ये खोई हुई दुनिया के लिए एक शोक गीत जैसा है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास की बड़ी बड़ी त्रासदियां अक्सर किसी बड़ी शैतानी से नहीं, बल्कि कल्पना की कमी, संवाद की विफलता और इंसानी लालच जैसी छोटी छोटी कमजोरियों से जन्म लेती हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।